नमस्कार भारत, तारीख 22 अगस्त दिन शनिवार, मैं हूं विनीत खरे। अमेरिका के हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के एक प्रमुख नेता की मौत। भारत पाकिस्तान बातचीत पर संकट के बादल।
ये जो हुर्रियत का मामला उठा करके कि हम आएंगे छाती ठोक कर, आपके गले पर अंगूठा रख कर, हम वो सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहें।
FTII में छात्रों की हड़ताल खत्म करने के लिए केंद्र की टीम का दौरा।
छात्रों से ही भी पूरी अच्छी तरह से बात हुई, फैकल्टी से भी बड़े यूजफुल सजेशंस मिले और डायरेक्टर ने भी बहुत यूजफुल सजेशंस दिए।
असम में बाढ़ का कहर जारी। झारखंड में एक पूर्व मंत्री गिरफ्तार। सुनिएगा फिल्म मांझी और ऑल इज वेल का रिव्यू। मुलाकात 10 साल की उम्र में जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले शुभम से और साथ में खेल और खिलाड़ी भी। लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार दिलनवाज पाशा से। व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि इराक के मोसुल में हुए अमरीकी हवाई हमले में इस्लामिक स्टेट के दूसरे नंबर के नेता फाजिल अहमद अल हयाली की मौत हो गई है। मंगलवार को हुए इस हमले में हयाली के वाहन को निशाना बनाया गया। फ्रांस में एक तेज रफ्तार ट्रेन में दो अमरीकी यात्रियों ने भारी हथियारों से लैस एक हमलावर पर काबू कर लिया। एम्स्टर्डम से पेरिस जा रही ट्रेन में उन्होंने संदिग्ध व्यवहार देखकर हमलावर को चुनौती दी और उसे कब्जे में ले लिया। इस दौरान हमलावर ने दोनों अमरीकियों समेत 3 लोगों को घायल कर दिया। बाद में अगले स्टेशन पर हमलावर को हिरासत में ले लिया गया। रिपोर्टों के मुताबिक हमलावर मोरक्को मूल का एक युवा है। फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक चरमपंथ विरोधी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आंतरिक मामलों के फ्रांसीसी मंत्री का कहना है कि यात्रियों की बहादुरी ने एक संभावित हादसा होने से बचा लिया। फ्रांस के आंतरिक मामलों के मंत्री बेनार काजनोव ने कहा,
Je tiens avec le président de la République, le premier ministre a exprimé à ces deux passagers.
मैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की ओर से खासतौर से उन दो अमरीकियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालातों में बहादुरी दिखाई। जो उन्होंने किया उसके बिना हमें एक दुखद हादसे का सामना करना पड़ सकता था। जिन अमरीकी यात्रियों ने हमलावर को रोका, माना जा रहा है कि वो अमरीकी सेना से जुड़े हैं। चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी की चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक बाजार में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट जारी रही। अमरीकी शेयर बाजार 3% तक गिर गया और डाउ जोन्स सूचकांक में ये सप्ताह 4 सालों का सबसे खराब सप्ताह रहा। यूरोप और एशिया के मुख्य बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। चीन ने बीते सप्ताह अपनी मुद्रा युआन का मूल्य घटा दिया था। चीन में तेल की खपत में कमी के अंदेशे के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में भी गिरावट आई है। दूसरी ओर सोने के दाम लगातार दूसरे दिन बढ़े हैं। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि सीमा पर प्रोपागेंडा प्रसारण बंद नहीं हुआ तो उत्तर कोरिया सख्त सैन्य कार्रवाई करेगा। संयुक्त राष्ट्र में एक दुर्लभ प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तर कोरिया के उपराजदूत एन म्योंग हुन ने कहा कि लाउड स्पीकरों से प्रसारण शनिवार दोपहर तक बंद हो जाना चाहिए। दोनों देशों के बीच 5 साल के अंतराल में हुई गोलीबारी के बाद शुक्रवार को उत्तर कोरिया ने अपनी सेनाओं से युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास को कुछ समय के लिए रोक दिया गया, लेकिन बाद में उसे फिर से शुरू कर दिया गया है। ग्वाटेमाला में अभियोजकों ने कस्टम्स एजेंसी में रिश्वत लेने के आरोपों का सामना कर रहे राष्ट्रपति ओटो पेरेज मोलिना के खिलाफ महाभियोग चलाने की अनुमति मांगी है। सेनेगल में 7 लोगों को समलैंगिकता के आरोपों में 6-6 महीने की सजा दी गई है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा में नमस्कार भारत, आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं, मैं हूँ विनीत खरे। अमरीका के व्हाइट हाउस ने कहा है कि इराक में एक ऑपरेशन के दौरान चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के उप प्रमुख को एक हवाई हमले में मार गिराया गया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा गया है कि मंगलवार को फाजिल अहमद अल हयाली उर्फ हाजी मुताज को उस वक्त मार दिया गया जब वो इराक के मोसुल शहर के नज़दीक एक गाड़ी में सफ़र कर रहे थे। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट के साथ दिलनवाज पाशा।
व्हाइट हाउस के मुताबिक इस्लामिक स्टेट के प्रमुख नेता फाजिल अहमद अल हयाली उत्तरी इराक में हुए एक अमरीकी हवाई हमले में मारे गए हैं। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक हाजी मुताज के नाम से चर्चित हयाली इस्लामिक स्टेट में दूसरे नंबर के नेता थे। अधिकारियों का कहना है कि इस सप्ताह मोसुल में हुए एक हवाई हमले में हयाली की मौत हुई है। हाल के महीनों में हुए हवाई हमलों में इस्लामिक स्टेट के कई बड़े नेता मारे गए हैं। पिछले महीने सीरिया में हुए एक हवाई हमले में एक और वरिष्ठ नेता की मौत हुई थी। अमेरिका की सुरक्षा परिषद से जुड़े नेड प्राइस ने एक बयान जारी कर बताया है कि हयाली सीरिया और इराक के बीच हथियारों की बड़ी खेपों, वाहनों, विस्फोटकों और लोगों के आदान प्रदान के कामों के समन्वयक थे। प्राइस ने बताया कि इराक में बीते दो सालों में इस्लामिक स्टेट के हमलों का समन्वय हलाली ने ही किया था, खासतौर पर बीते साल मोसुल पर हमला उन्हीं के निर्देशन में हुआ। हयाली को इस्लामिक स्टेट के नेता अबू बकर अल बगदादी का वरिष्ठ सहयोगी बताया जाता रहा है। बगदादी भी मार्च में हुए एक हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमरीकी अधिकारियों के मुताबिक हयाली की मौत का इस्लामिक स्टेट की गतिविधियों पर भी व्यापक असर होगा। जिस हवाई हमले में हयाली मारे गए हैं उसी में इस्लामिक स्टेट के मीडिया समन्वयक अबू अब्दुल्लाह की भी मौत हुई है। चरमपंथी समूह इस्लामिक स्टेट ने सीरिया और इराक के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों का गठबंधन इस्लामिक स्टेट के खिलाफ हवाई हमले कर रहा है।
ये थे दिलनवाज पाशा। भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच होने वाली बातचीत से पहले दोनों तरफ से हो रही बयानबाजियों ने माहौल में तल्खी ला दी है, जहां भारत सरकार ने पाकिस्तान को सलाह दी है कि उसके अधिकारियों का हुर्रियत नेताओं से बात करना उचित नहीं होगा। पाकिस्तान ने सलाह को नकार दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान को निराशाजनक बताया गया और उनके शब्दों में जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच आधिकारिक बातचीत से पहले भारत की ओर से शर्त लगा दी गई, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। इस मुद्दे पर सुशीला सिंह ने सुरक्षा मामलों के जानकार सुशांत सरीन से बात की।
मेरी नज़र में मेन मुद्दा ये नहीं है कि हुर्रियत से बातचीत होनी चाहिए या नहीं, मेन मुद्दा ये है कि क्या एक ऐसा देश जो एक अपनी डेलीगेशन एक दूसरे देश में भेज रहा है, क्या ये डिक्टेट कर सकता है टर्म्स कि वो डेलीगेशन वहां जाके क्या करेगी, किससे मिलेगी, या फिर ये जो क्षेत्र है वो जो होस्ट गवर्नमेंट है वो डिसाइड करे। ये सारी कूटनीतिक मर्यादाएं जो है उसका उल्लंघन करती है और जो भारत के अंदर जो एक सेंटिमेंट है उस पर ठेस लगाती है। तो मेरी नजर से मेन मुद्दा ये है कि जब भारत सरकार ने ये कहा कि ये हमारे लिए माननीय नहीं है तो पाकिस्तान को ये मान लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं मान रहा, उसका एक सीधा जो कारण वो नजर आता है वो ये है कि एक कोशिश रही है पाकिस्तान की कि इस वार्तालाप से एक तरीके का किनारा काटा जाए। और एक हमने एक एक मुसलसल एक कोशिश देखी है, चाहे वो LOC पर सीज फायर वायलेशन हो, अब वो जो आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं गुरदासपुर में, उधमपुर में और जगहों पर, या फिर अब ये जो हुर्रियत का मामला उठा करके कि हम आएंगे छाती ठोक कर आपके गले पर अंगूठा रख कर हम वो सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहें, आपका देश है तो भाड़ में जाएं आप और आप हमारे अधीन है और हम जो चाहें वो करेंगे। मेरे ख्याल इस तरह का रवैया किसी भी सरकार के लिए मान्य नहीं हो सकता।
उफा में तय हुआ था कि चरमपंथ के मुद्दे पर बातचीत होगी, लेकिन अब जो है पाकिस्तान ये कह रहा है कि कश्मीर के मुद्दे पर भी बातचीत होगी, जो सीमा पार गोलीबारी चल रही है उस पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान क्या दर्शाना चाह रहा है?
वो साबोटाज करना चाहता है इस सारी बात को, और लेकिन उसका इल्जाम जो है अपने सर नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि हम इस तरीके से हालात पैदा करें कि भारत के अंदर ही एक प्रतिक्रिया आए और भारत इस बातचीत को खारिज करे, ताकि अगली बारी जब भी कोई बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी तो फिर हम उसमें उस तरह की गलती नहीं करेंगे जिस तरह की शायद हमने उफा में करी, और केवल आतंकवाद के मुद्दे को सहरे फहरिस्त रख करके और बाकी सारे मुद्दे जो है वो पीछे बैक बर्नर पे चले गए। कोशिश उनकी ये है और भारत की कोशिश ये है कि क्योंकि अब हमने आपको एक गोल पोस्ट सेट कर दिया है, इस गोल पोस्ट को हम नहीं हटाने देंगे। बात होगी तो वहीं से शुरू होगी जहां पर उफा पे खत्म हुई थी, और आतंकवाद के मुद्दे पर ही बात होगी और बॉर्डर मैनेजमेंट के मुद्दों पर बात होगी। बाकी सारी चीजें जो है वो जब ये ट्रैक कहीं पे पहुंचेगा तब फिर बाकी सारी जो चीजें हैं वो भी जेरे बहस आ सकती हैं, और उसमें हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। तभी उफा की डिक्लेरेशन में ये साफ तौर से कहा गया था कि हिंदुस्तान जो है वो तमाम और मुद्दों पर तैयार है पाकिस्तान से बातचीत करना, लेकिन जो रोड मैप तय हुआ था वो केवल आतंकवाद, बॉर्डर मैनेजमेंट, मुंबई हमलों के ऊपर, मछुआरों के ऊपर और जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके ऊपर, इन पांच मुद्दों पर रोड मैप तय हुआ था। कश्मीर और बाकी सारे मुद्दों के ऊपर ना तो कोई रोड मैप है, ना कोई स्ट्रक्चर है और ना कोई फ्रेमवर्क है। वो बात की बात थी। और ये चीज सरताज अजीज खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मान चुके थे जब वो उफा से वापस गए थे।
तो हम ये जानना चाहते हैं कि एक साल पहले जो विदेश सचिव की बातचीत टली थी और अब राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक से पहले ये तलखी देखी जा रही है दोनों देशों के रिश्तों के बीच, तो अब ये बातचीत किस दिशा में आपको जाती हुई दिखाई दे रही है?
मेरे को नहीं लगता कि किसी दिशा में जाएगी। अभी तो पता नहीं कि बातचीत शुरू भी होती है कि नहीं, और अगर पाकिस्तान बातचीत को खारिज करता है, सरताज अजीज यहाँ पर आके कोई तमाशा खड़ा करने की कोशिश करते हैं, तो ऑब्वियसली ये जो प्रोसेस है कुछ खटाई में पड़ेगा, लेकिन अभी तो रोड मैप यही है।
ये थे सुशांत सरीन।
बीबीसी इंडिया बोल।
हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में फैसला दिया कि जनप्रतिनिधियों, नौकरशाहों और अन्य उच्च पदों पर बैठे अधिकारियों के बच्चों को सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य है। सवाल यह है कि आखिरकार सरकारी स्कूलों में ऐसी क्या कमी है जो उच्च पदों पर बैठे लोग अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना चाहते। सरकारी स्कूलों में बच्चों को न पढ़ाने के पीछे उसकी गुणवत्ता वजह है या फिर स्टेटस सिंबल का सवाल है? इस शनिवार बीबीसी इंडिया बोल में यही है चर्चा का विषय। शामिल होने के लिए मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान यानी FTII में जारी हड़ताल को लेकर केंद्र सरकार की 3 सदस्यों वाली टीम ने कल संस्था का दौरा किया। SM खान की अगुवाई वाली इस टीम ने संस्था के निदेशक प्रशांत पाठराबे, रजिस्ट्रार और अध्यापकों के साथ साथ पूर्व छात्रों और हड़ताली छात्रों से भी मुलाकात की। पुणे से देवीदेश पांडे की रिपोर्ट।
भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII में जारी हड़ताल को लेकर केंद्र की 3 सदस्यों वाली टीम ने कल संस्था का दौरा किया। दिन भर की चर्चाओं के बाद टीम ने इन्हें सकारात्मक बताया। यह टीम सोमवार को अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपेगी। रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स फॉर इंडिया के महानिदेशक SM खान की अगुवाई वाली इस टीम में सूचना प्रसारण मंत्रालय में निदेशक अंशु सिन्हा और अंडर सेक्रेटरी S नागनाथन शामिल थे। तीनों अधिकारियों ने संस्था के निदेशक प्रशांत पाठराबे, रजिस्ट्रार, अध्यापकों के साथ साथ पूर्व छात्रों और हड़ताली छात्रों से भी मुलाकातें की। छात्रों द्वारा उठाए गए सवालों के साथ ही हाल में हुए हंगामों, अध्यापकों की आपत्तियां, सुरक्षा के लिए निदेशक पाठराबे द्वारा पुलिस के साथ साथ बाउंसर को तैनात करना आदि कई मुद्दों पर चर्चाओं के दौर हुए। दिन के आखिर में खान ने कहा कि ये बातें सकारात्मक हुई है। हड़ताल खत्म होने के बारे में भी उन्होंने आशा जताई।
छात्रों से बहुत अच्छी बात हुई और छात्रों ने अपनी बातें भी रखी और हम लोगों ने भी अपनी बातें रखी। छात्रों से ही भी पूरी अच्छी तरह से बात हुई, फैकल्टी से भी बड़े यूजफुल सजेशंस मिले और डायरेक्टर ने भी बहुत यूजफुल सजेशंस दिए।
सोमवार की रात निदेशक के कार्यालय में हंगामा हुआ था और उसके बाद 5 छात्रों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में जमानत पर उनकी रिहाई हुई। केंद्र की टीम पुणे में इस पृष्ठभूमि में आई थी। इस बारे में सवाल पूछने पर खान ने कहा कि यह मामला पुलिस का है और वे इसमें बात नहीं कर सकते। इस टीम ने छात्रों से भी लगभग 2 घंटे तक बातें की। संस्था के छात्र विकास अरस ने कहा कि पहली बार छात्रों की किसी से आमने सामने बात हुई है, जिससे वे संतुष्ट है और उन्होंने भी इस चर्चा को सकारात्मक बताया।
This is the first step taken in 71 days where the ministry has come down and spoke to us.
पिछले 71 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है कि मंत्रालय ने हमारे साथ सीधे बात की है। उन्होंने मीडिया के जरिए हमसे बात नहीं की और ना ही किसी थर्ड पार्टी के जरिए की, उन्होंने सीधे हमसे बात की। हम इससे बहुत खुश हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि अब चीजें बेहतर माहौल में हो सकती हैं। हमने उनसे अनुरोध किया है कि भविष्य में किसी भी समाधान के लिए कैंपस में माहौल ठीक होना चाहिए, इसलिए हम दबाव डालते रहे हैं कि मंत्रालय के लोग कैंपस में आएं, क्योंकि हम दिल्ली जाते हैं तो उसके अलग अर्थ हैं और अगर मंत्रालय के लोग कैंपस में आते हैं तो उसका अलग अर्थ है। इसलिए मंत्रालय की ओर से इस तरह का रुख अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है और हमें इससे उम्मीद जगी है।
गजेंद्र चौहान को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का विरोध कर रहे छात्रों के हड़ताल का आज 72वां दिन था। इस दौरान राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक ने इस मुद्दे पर सरकार पर निशाना साधा था। इससे जहां एक ओर इस मुद्दे का राजनीतिकरण हुआ है, वहीं छात्रों की गिरफ्तारी के बाद इसे कानून और व्यवस्था का मुद्दा भी बनाया गया।
पुणे से ये रिपोर्ट हमें भेजी थी देवीदास देश पांडे ने। असम में जारी बाढ़ के कहर पर मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने अधिकारियों के साथ बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया है। राज्य में लाखों लोगों पर बाढ़ का असर पड़ा है। गुवाहाटी से पत्रकार दिलीप शर्मा।
असम में आई बाढ़ के कारण हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। शुक्रवार को बाढ़ के पानी में बह जाने से 3 लोगों की मौत हो गई। राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की एक जानकारी के अनुसार 19 जिलों में करीब 1000 गाँव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जहाँ 6 लाख लोग बाढ़ प्रभावित बताए गए हैं। इस बीच जगह जगह खोले गए राहत शिविरों में 1,22,000 से अधिक लोगों को रखा गया है। मुख्यमंत्री ने ताजा स्थिति की समीक्षा करने के लिए आज जल संसाधन विभाग के मंत्री बसंत कुमार दास और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि राहत और बचाव कार्य में किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इस बीच सेना को भी बाढ़ में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए उतारा गया है। राहत और बचाव कार्य में जुटे प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि कई जगह सड़कें टूट जाने के कारण बचाव कार्य में काफी दिक्कतें आ रही है। इधर राहत शिविरों में भी खाद्य सामग्री को लेकर लोगों में नाराजगी है। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी सरकार ने पर्याप्त खाद्य सामग्री और दवाइयों की व्यवस्था की गई है। खासकर बच्चों और महिलाओं की देखरेख के लिए एक अलग से टीम बनाई गई है, जो राहत शिविरों के बाहर अब उनकी देखभाल कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों से कहा है कि वो जगह जगह अपना कैंप बनाएं और लोगों को ध्यान रखें। सभी ओर अलर्ट जारी कर दिया गया है तथा कई इमरजेंसी नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत के लिए लोग सीधे फोन कर सकें।
गुवाहाटी से ये थे दिलीप शर्मा। झारखंड में हजारीबाग पुलिस ने एक पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को गिरफ्तार किया है। पूर्व मंत्री की पत्नी निर्मला देवी के खिलाफ भी पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट हासिल किया है। ये वे हजारीबाग जिले की बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक हैं। पुलिस उनकी भी गिरफ्तारी की कोशिशों में जुटी है। क्या है पूरा मामला बता रहे हैं रांची से नीरज सिन्हा।
योगेंद्र साव को रांची से गिरफ्तार करने के बाद हजारीबाग के सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पिछले 14 अगस्त को योगेंद्र साव और उनकी पत्नी निर्मला देवी के नेतृत्व में विस्थापन के सवाल पर बड़का गांव में जुलूस निकाला गया था। जुलूस को रोके जाने के बाद भीड़ की पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई थी। उग्र भीड़ ने अफसरों की कई गाड़ियां जला दी थी, जबकि पथराव और फायरिंग में पुलिस के 19 जवान समेत 25 लोग घायल हुए थे। इसी मामले में पुलिस ने पूर्व मंत्री और उनकी पत्नी समेत 66 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। हजारीबाग के SP अखिलेश झा ने जानकारी दी है कि इस मामले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गौरतलब है कि योगेंद्र साव पहले भी नक्सली संगठनों को संरक्षण देने के आरोप में जेल जा चुके हैं, तब उन्हें दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। नीरज सिन्हा, BBC रांची।
BBC हिंदी सेवा में आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत, मैं हूं विनीत खरे। इस हफ्ते 2 फिल्में रिलीज हुई हैं, मां जी और ऑल इज वेल। रिव्यूअर नम्रता जोशी के साथ हैं सुमिरन प्रीत कौर।
इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है फिल्म क्रिटिक नम्रता जोशी। नम्रता जी, ये बताइए फिल्म मां जी द माउंटेन मैन आपको कैसी लगी?
एक तो ये है कि केतन मेहता की फिल्म है, जिनकी हमने जो पुरानी फिल्में, जब पैरेलल सिनेमा मूवमेंट अपनी चरम सीमा पे था, तो उनकी जो फिल्में हमने देखी हुई हैं, तो ऑब्वियसली वो इतने समय बाद अगर कोई फिल्म लेकर आते हैं, रंगरसिया तो बीच में उनकी कब आई कब गई पता भी नहीं चला, तो इतने समय बाद जब उनकी फिल्म आती है तो एक सर्टन एक्साइटमेंट, एक उत्सुकता रहती है। दूसरी बात यह है कि फिल्म का जो कहानी है अपने आप में वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि कैसे 20 साल लगा के दशरथ मांझी जो हैं, उन्होंने एक सिंपल हथौड़े से पहाड़ तोड़ा और सड़क बनाई, गांव से शहर तक का रास्ता बनाया। बहुत ही हिला देने वाली कहानी बन सकती थी अगर हम उसको एक लार्जर सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी देखते। मुझे लगा कहीं पर केतन ने अपना जो पुराना उनका एक एक सुर होता था ना, एज अ डायरेक्टर एक सुर होता है, आप सकली बात करते हैं, आप सिंबल्स में बात करते हैं, और उससे कहीं पर लेयर्स ज़्यादा आती हैं, मीनिंग ज़्यादा आता है, चाहे उनकी एक जो कहते हैं सीरियसनेस रीच आउट करने में होती है। यहाँ पर मुझे लगा उन्होंने अपना जो एक idiom है, अपना जो एक कहने का फिल्म को बनाने का स्टाइल है, उसको त्याग करके मेन स्ट्रीम idiom को पकड़ने की बहुत कोशिश करी है। बहुत ज़्यादा इमोशनल मेलोड्रामेटिक और लाउड एक्सेसिव कर दिया है फिल्म को। भारतीय फिल्मों में जो वो होता है ना एक्सट्रीम्स, वो आ गए हैं। मैं इसे 2 ही स्टार्स दूंगी।
ये बताइए ये फिल्म ऑल इज वेल कितनी वेल थी?
बहुत ज्यादा बेफालतू की फिल्म है। इसके डायरेक्टर उमेश शुक्ला की पहली फिल्म मुझे बताई गई ओ माय गॉड थी, OMG, जिसमें कि ये जो साधु बाबाओं के ऊपर और अंधविश्वासों के ऊपर एक अच्छा डिबेट लेके चले थे। तो अगर एक लाइन में कहना हो तो सिर्फ ये कह सकते हैं कि OMG, ऑल इज डेफिनेटली नॉट वेल। और इनफैक्ट आई वॉज फीलिंग वेरी अनवेल आफ्टर द फिल्म, और मतलब बहुत बेइंतहा बोरिंग, बेइंतहा बेसरपैर के जोक्स हैं, और द एक्टर्स जो आपके पास हैं ऋषि कपूर, सुप्रिया पाठक, मतलब एक लेवल पे यू सडनली गो नॉस्टैल्जिक एंड यू फील बैड कि इन जैसे लोगों को आप ये करवा रहे हैं।
ये थी नम्रता जोशी, उनके साथ प्रोग्राम पेश कर रही थी सुमिरन प्रीत कौर। हरियाणा के इसराना गांव के रहने वाले शुभम 10 साल की उम्र में जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीत कर बहुत चर्चा में है। शुभम के पिता कभी दूध बेचने का काम किया करते थे, उनसे मुलाकात की वंदना ने।
10 साल की उम्र में जूनियर वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप जीतने वाले शुभम इन दिनों खूब चर्चा में हैं। पिछले 2 सालों में उन्होंने कई खिताब अपने नाम कर लिए हैं। हरियाणा के इसराना गांव के रहने वाले शुभम के गांव में एक NRI ने कुछ साल पहले गोल्फ एकेडमी बनाई थी। एकेडमी तो 2-3 महीनों में ही बंद हो गई, लेकिन तब 5.5 साल के रहे शुभम को गोल्फ का चस्का लग गया।
मेरे घर पे एक छोटा सा 10 यार्ड का एक छोटा सा घास लगा दिया था वहाँ पर, और वहाँ पर मैं चिपिंग करता था, छोटी चिपिंग करता था, और मेरे घर की छत फ्लैट है सो उसके ऊपर थोड़ा रेत डाल के जैसे बंकर शॉट्स होते हैं मैं वो प्रैक्टिस करता था, और यूट्यूब से सीखता था मैं गोल्फ, क्योंकि विलेज में तो कोई कोच नहीं था। जब एकेडमी बंद होगी तो कोई नहीं था, तो मैंने यूट्यूब से सीखा। सो ऐसे ऐसे मैं प्रोग्रेस अपनी बढ़ाता रहता।
गांव में रहकर गोल्फ खेलना शुभम के लिए मुमकिन नहीं था। तब उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाए दिल्ली गोल्फ फाउंडेशन ने, जिसके बाद शुभम और उसके माता पिता दिल्ली आ गए। हालांकि उन्हें कई आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा। शुभम के पिता जगपाल जागलान,
6-7 महीने दिल्ली आने के बाद स्कूल ही नहीं मिल रहा था, स्कूल में भी नहीं जाना, सारा दिन प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस। वहाँ कैंटीन होती थी, वहाँ हम जो तंदूर की रोटी होती है ना वो खाते थे, जैसे एक रोटी खाई पानी पीते रहे, क्यों पेट वो खुला देती है, भूख ही नहीं लगती। तो वो टाइम भी था। इसका कैडी मैं खुद करता हूँ, क्योंकि अगर आप गोल्फ क्लब में कोई कैडी लेंगे तो 250 से लेके 500 रुपये तक आपको देना पड़ेगा, लेकिन वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं वो बचाता हूँ। दूसरा सबसे ज़रूरी है मैं अपने बच्चे के साथ रहता हूँ, मैं इसको कभी अकेला नहीं छोड़ता।
शुभम के पिता कहते हैं कि एक समय था जब गाँव के उनके घर में तकरीबन हर कोई शुभम के गोल्फ खेलने के खिलाफ था, लेकिन माँ अंजना डटी रही। आज भी अंजना उन दिनों को याद कर भावुक हो जाती हैं।
जब मेरी शादी हुई तो मैंने यहाँ का माहौल देखा कि सब लोग पहलवानी ये सब चीज़ें करते हैं, तो मतलब एक बात करने का ढंग, एक किसी को रिस्पेक्ट देना, ये सब चीज़ें यहाँ पे हरियाणा में बहुत कम मिलती हैं। तो मैं चाहती थी कि ये पहलवान नहीं बने। गोल्फ जब इसके लाइफ में आया कि हाँ कुछ चीज़ है, तो मुझे लगा कि शायद कुछ मिल गया है जिसकी मुझे तलाश थी।
शुभम की ट्रेनिंग का जिम्मा संभालने वाले और पूर्व गोल्फ चैंपियन अमित लूथरा कहते हैं कि शुभम में वाकई कुछ खास है। विदेशों में खेलने से शुभम के खेल और पर्सनालिटी दोनों में निखार आया है। हालांकि नन्हे शुभम के लिए पढ़ाई और गोल्फ में बैलेंस रखना उतना आसान नहीं है।
थोड़ी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, सो फोर्स जैसे कहते हैं बॉर्न टू गोल्फ फोर्स टू स्टडी।
शुभम के स्कूल ने उनकी फीस माफ कर रखी है। आज शुभम बड़े बड़ों को गोल्फ में पछाड़ देते हैं और जाते जाते उन्होंने मुझ जैसे नौसिखिए को भी एक मास्टर की तरह कुछ टिप्स दिए। कुछ दिन पहले ही अपना 11वां जन्मदिन मनाने वाले शुभम की नजर अब 15 साल में एशिया पैसिफिक चैंपियन बनने पर है। वंदना, बीबीसी दिल्ली।
और अब जानते हैं आज के अखबार क्या कह रहे हैं। दिलनवाज पाशा स्टूडियो में है।
जी विनीत, आज के अखबारों में भारत और पाकिस्तान की वार्ता को लेकर जो संशय है उसी से जुड़ी खबरें पहले पन्ने पर हैं। हिंदुस्तान लिखता है भारत पाक वार्ता पर संकट गहराया, जनसत्ता का शीर्षक है नापाक पैंतरे से संकट में शांति। लेकिन जिक्र करूंगा हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर प्रकाशित इस खास खबर का जिसमें दाऊद इब्राहिम का ताज़ा फोटो प्रकाशित किया गया है। बताया जा रहा है कि ये फोटो जांच एजेंसियों से, भारतीय जांच एजेंसियों से मिला है और दाऊद इब्राहिम का ये फोटो 2012 में खींचा गया था। अब जिक्र इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर का जिसके मुताबिक बिहार में चुनावों से पहले दंगे की तैयारियां हो रही हैं, ऐसा ये खबर कहती है। एक्सक्लूसिव खबर बताया जा रहा है। इसके मुताबिक मस्जिदों में मरे हुए जानवर और मंदिरों में मूर्तियों के साथ छेड़खानी की जा रही है। इंडियन एक्सप्रेस एक सीरीज चला रहा है बिहार के चुनावों को लेकर और उसी से जुड़ी ये खबर है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री मन की बात कार्यक्रम जो रेडियो पर करते हैं उससे जुड़े जो पत्र उन्हें मिलते हैं उनकी संख्या में गिरावट आ रही है। ऑल इंडिया रेडियो के पोस्ट बॉक्स नंबर 111 को जो पत्र आते हैं उनकी संख्या लगातार गिर रही है, ये कह रही है द हिंदू की ये रिपोर्ट। और दैनिक भास्कर की एक खबर के मुताबिक प्रेम सुख नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने दशरथ मांझी जैसा ही कारनामा किया है। जिस तरीके से दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी की याद में पहाड़ काटा था, इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रेम सुखदास ने अपनी माँ के लिए पहाड़ काटकर पहाड़ में बांध बनाया ताकि उनकी माँ को कहीं और पानी लेने के लिए न जाना पड़े। आपको जैसा कि हमने आज जिक्र किया, मांझी फिल्म आई है और ऐसे लोगों के कारनामों का मीडिया में खासा जिक्र हो रहा है। और एक और खबर जो छूट रही वो है आम आदमी पार्टी के विधायक कमांडो, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, ये कल गिरफ्तार कर लिए गए हैं, कमांडो सुरेंद्र शायद।
जी बहुत शुक्रिया आपका दिलनवाज। और अब खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। पिछले दिनों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की साइना नेहवाल की खुशी तब दोगुनी हो गई जब वो दुनिया की नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी भी बन गई। हालांकि इससे पहले वो इसी साल 1 मार्च को इंडियन ओपन जीतने के बाद दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनी थी, लेकिन जल्दी ही उन्होंने अपना शीर्ष स्थान खो दिया। मई में वो एक बार फिर नंबर एक बने, लेकिन जून में कैरोलिना मारिन ने उन्हें रैंकिंग में नीचे पहुंचाया। साइना नेहवाल अपनी कामयाबी से बेहद खुश हैं।
ग्रेट ग्रेट फीलिंग, आई थिंक बहुत अच्छा लगता है जब एक प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 बनता है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी अगेन एट द टॉप ऑफ द रैंकिंग्स एंड आई होप टू मेंटेन इट फॉर लॉन्गर टाइम।
वैसे साइना नेहवाल मानती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी हासिल करना आसान नहीं होता और अपने बारे में उन्होंने कुछ बेहद खास बताते हुए कहा।
काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को, लेकिन वही एक चैंपियन बनता है जो सब स्ट्रगल को क्रॉस करके आगे आता है। मैंने वो हमेशा एक जिद दिखाई है जीतने की और वो हिम्मत की है कि मैं हमेशा अच्छा हार्डवर्क करूं और जब भी टूर्नामेंट्स में जाऊं अच्छा प्रिपेयर होके जाऊं, तो आई थिंक उसकी वजह से रिजल्ट आए हैं।
उधर चीन के बीजिंग नेशनल स्टेडियम में आज से 15वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू होने जा रही है। डिस्कस थ्रो में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता विकास गौड़ा और 800 मीटर महिला दौड़ में वुहान एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता टिंटू लुका सहित 17 सदस्य टीम के दम पर भारत भी अपनी चुनौती पेश करेगा। आज पहले ही दिन जमैका के सुपर स्टार उसेन बोल्ट 100 मीटर हीट में उतरेंगे। बोल्ट के नाम विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 8 स्वर्ण पदक हैं। खेल और खिलाड़ी में आज बस इतना ही।
और कार्यक्रम के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
व्हाइट हाउस के अधिकारियों का कहना है कि इस्लामिक स्टेट के दूसरे नंबर के नेता फाजिल अहमद अल हयाली की अमरीकी हवाई हमले में मौत हो गई है। फ्रांस में एक तेज रफ्तार ट्रेन में दो अमरीकी यात्रियों ने भारी हथियारों से लैस एक हमलावर पर काबू कर लिया। चीनी अर्थव्यवस्था में मंदी की चिंताओं के मद्देनजर वैश्विक बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। अमरीकी शेयर बाजार में 3% तक गिरावट दर्ज की गई। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर दक्षिण कोरिया को चुनौती देते हुए कहा है कि यदि सीमा पर प्रोपेगेंडा प्रसारण बंद नहीं हुआ तो उत्तर कोरिया सख्त सैन्य कार्रवाई करेगा। बीबीसी समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे दिलनवाज पाशा, मैं हूं विनीत खरे। श्रोताओं से हमारी अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में।